यानी ई आंसुर कुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, ये याद रखो कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि वो रब जो कायनात का मालिक है, अगर वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे साथ होगा तो कोई गलबा नहीं पा सकता। ये इंडिविजुअल लाइफ में भी है, इज्तमाई जिंदगी में भी है। वा इन यखज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बाद। ये बात इसलिए बताई गई तवक्कुल के हवाले से कि तवक्कुल इतनी बड़ी शय है, जब इंसान तवक्कुल करने लगे तो सोचे तो सही कि मैं तवक्कुल किस पे कर रहा हूँ। मैं उस पे तवक्कुल कर रहा हूँ जो कि उसकी मदद अगर मेरे साथ हुई तो फिर मेरे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। आप सरसरम ने फरमाया, अगर तमाम दुनिया के लोग मिलके तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज्जत ना हो। और तमाम इंसान मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह का इज्जत ना हो। ये बात कहनी तो आसान है, इसका यकीन दिल में बिठाना वो मुश्किल है ना, कि इंसान फिर यकीन नहीं आता ना उसको, तो फिर मदद किसकी चाहनी चाहिए? अल्लाह की। अगर वो छोड़ दे तुमको, फिर उसके बाद वो कौन है जो तुम्हारी मदद करे? अगर उसने यारो मददगार छोड़ दिया, वो नहीं तुम्हारे साथ होता, तो अब सारी दुनिया भी तुम्हारे साथ मिल जाए ना, सारी दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, तो तुम्हारे लिए फायदा नहीं हो सकता। अब हुनैन में देखें, जिनको याद है सीरत से जंगे हुनैन, मुसलमानों का लश्कर बहुत बड़ा था, 12,000 उनकी तादाद थी। तो उनके दिल में उस दिन ये बात आई कि जिस दिन हम 313 थे उस दिन हम जीत गए, तो आज तो हम जीत ही जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी अपनी कसरत की वो आ गई ना, अल्लाह की मदद खत्म हो गई। तुमने कहा मैं अपनी कसरत, तादाद की कसरत की वजह से जीतूंगा, अल्लाह की मदद की तरफ नहीं देखा, तो अल्लाह ने छोड़ दी और फिर क्या हुआ था। तो इसलिए अल्लाह ही से मदद मांगो, क्योंकि उसकी मदद मिल गई तो फिर कोई नुकसान नहीं हो सकता। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को तो चाहिए वो अल्लाह पे ही भरोसा करें। काफिर तो का तो अब सामान पे भरोसा होता है ना, वो है ना काफिर है तो उसका दूसरा मुझे मिसरा आ रहा है, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मुझे पहला भूल गया। तो मोमिन जो है उसका भरोसा अल्लाह के ऊपर होता है, इसलिए वो सामान को नहीं देखता कि मेरे पास सामान कितना है, मेरे पास नफरी कितनी है, वो ये देखता है अल्लाह जिस जो सबसे पावरफुल है वो मेरे साथ है, सबसे कुव्वत वाला। इसीलिए इंसान कहता ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या है? अल्लाह पे तवक्कुल है। मैं जितना भी सामान कर लूँ, मैं जितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं जितना भी अपनी तरफ से बेस्ट कर लूँ, लेकिन मेरी कोई ताकत और कुव्वत नहीं, ऐसे अल्लाह ताला के पास ही है सारी तो ताकत और कुव्वत। वमा काना ली नबीयन, हाँ ये बात है, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वमा काना ली नबीयन अन यकुल, किसी नबी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो खयानत करे। ये बात क्यों कही गई? असल में क्या हुआ था कि माले गनीमत में से इब्ने अब्बास ही फरमाते हैं कि जंगे बदर के दिन कोई एक सुर्ख रंग की एक चादर थी, वो माले गनीमत की थी, वो गुम हो गई, नहीं मिल रही थी। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चादर ले ली होगी, वो आपके लिए जायज़ ही होगी कि आपने उठा ली होगी, तो कोई बात नहीं, वो कर सकते होंगे। बाज़ कहते हैं ये मुनाफिकीन का कॉल था। तो ये आयत नाजिल हुई कि नबी की ये शान नहीं है, नबी तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं है, उसके लिए तो मुनाफसे भी नहीं है कि वो ये करे। इसी तरह गिल का एक मतलब कीना भी है, दुआ भी आती है ना, अल्लाह गिल ना हमारे दिल के अंदर हो ईमान वालों के बारे में। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को माफ कर दिया, तो कुछ मुनाफिकीन ने कहा नहीं जी दिल से नहीं माफ किया, ऐसे ही ऊपर ऊपर से किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी की ये शान नहीं है कि दिल में कुछ रखे और जुबान पे कुछ और हो, ठीक है? वो नबी की ये शान नहीं है कि कि वो दिल में कीने पाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी आता है एक और जगह पे कि हज़रत उमर फरमाते हैं खैबर के दिन सहाबा कराम आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि फलां शहीद हुआ फलां शहीद हुआ, तो एक आदमी का जिक्र हुआ, सहाबा कराम ने उसके बारे में कहा वो शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हरगिज़ शहीद नहीं है, मैंने उसको जहन्नुम में देखा क्योंकि उसने माले गनीमत में से एक चादर चुरा ली है। और आपने फरमाया जाओ लोगों में ऐलान कर दो जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होगा। यानी ये जो आगे बात आ रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये कि वा मई यहलुल याती बिमा गल्ला यौमल कियामत, जो भी खयानत करेगा वो उस खयानत को कियामत के दिन लेकर आएगा। यानी वो अमानत में खयानत है। ये काम नबी तो कर ही नहीं सकता, नबी के बारे में ये गुमान कर रहे हैं कि वो कोई चीज चुरा लें या माले गनीमत में से खयानत कर लें, या वैसे आम खयानत के लिए भी आता है और माले गनीमत में खयानत के लिए भी गिल का लफ्ज आता है। तो ये तुम गुमान भी कैसे कर सकते हो कि नबी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई खयानत करेगा वो तो अपनी उस खयानत की भी चीज को कयामत के दिन उठा के लाएगा, वो उठा के लाएगा। और अगर इसका माना कीना लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम ये सोचते हो कि उन्होंने जुबानी माफ कर दिया, दिल से नहीं माफ किया, तो ये तो एक खयानत है। कयामत के दिन तो दिल भी सामने आ जाएंगे, जो दिलों में है वो भी इंसान लेकर आएगा, जो भी गिल इसके अंदर पाले में, जो भी कीने इसके अंदर पाले में, वो छुपे थोड़ी रहने। आज तो किसी को भी नहीं पता मेरे दिल में किसके लिए कीना, किसके लिए बोझ भरे में, इल फीलिंग्स किसके लिए हैं। लेकिन कयामत के दिन तो सब आ जाएंगी सामने, तो आज छुपाई जा सकती है, उस दिन तो नहीं छुपाई जा सकेगी। और माले गनीमत के बारे में अगर बात कही जाए तो फिर चाहे वो माले गनीमत की खयानत हो या किसी चीज की भी खयानत हो, ये हदीस हमें बताती है कि ये खयानत करने से इंसान के लिए कयामत में कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, चाहे वो सुई तक की कयामत हो, खयानत हो। आप ये अंदाजा करें कि एक आदमी के बारे में जब उन्होंने कहा कि माले गनीमत भी एक कि वो शहीद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं मैं उसको जहन्नुम में देख रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि उसने माले गनीमत सिर्फ एक चादर चुराई थी, सिर्फ एक चादर। चादर कौन सी बड़ी चीज है? तो फरमाया मैं उसको देख रहा हूँ वो जहन्नुम में है और चादर उसके ऊपर आग का शोला बनी हुई है। अंदाजा कीजिए एक चादर की क्या वैल्यू है। लेकिन खयानत की, यानी जो माल साहब का था, सारे जितने लोग थे उन सारों की एक पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लें, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी था, उसमें से चीज चुराई। अच्छा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको तो हम सारे ही समझते हैं कि इसका क्या है। हाँ, किसी इंडिविजुअल की होगा, मतलब किसी का घर है या किसी की कोई गाड़ी है या किसी की कोई चीज है, तो उसको फिर भी हम एहतियात से यूज करते हैं कि फलां की है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है यानी हुकूमत की है, सब उसको यूज कर सकते हैं, उसको तो हम कुछ समझते ही नहीं। उन जगहों को, उन बिल्डिंग्स को, उन पार्क्स को, उन उनकी गाड़ियों को, उनकी उनको तो हम समझते हैं कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। हालांकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सबकी है। उसके अंदर अगर कोई खयानत करता है तो वो सबकी चीजों में खयानत कर रहा है। समझ आई बात? वैसे भी खयानत नहीं करनी, इंडिविजुअल के लिए भी नहीं खयानत करनी, लेकिन जिस वक्त सबकी कोई चीज, सबकी उसके अंदर हिस्सा हो, उस वक्त जो खयानत करेगा उसका बवाल तो बहुत गुना बढ़ जाता है। और ये एक हदीस है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जगह तशरीफ फरमाते तो ये खयानत का जिक्र आया, उस कितना इसका गुना सख्त है। तो फरमाया मैं तुम में से किसी एक को कयामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पे ऊंट सवार हो और वो बुड़बुड़ा रहा हो, यानी ऊंट बोल रहा है, और वो शख्स कहे या रसूल्ला मेरी मदद करें, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं, मैं तुझे बता चुका था। यानी एक आदमी ये ना हो कि मेरी उम्मत में से ऐसा हो उसने ऊंट की खयानत की है, अब वो ऊंट उसके ऊपर है सवार और वो ऊंट बोल रहा है, और ये बंदा कहता है अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा तो कहेगा कि या रसूल्ला आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपका उम्मती हूँ, आपने फरमाया मैं क्या तुम्हारी मदद करूं, मैं तो तुम्हें बता दिया था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं तुम में से किसी एक को कयामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर सवार घोड़ा हिनहिना रहा हो, और वो कहे या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किस चीज का मालिक हूं, किसी चीज का मालिक नहीं हूं। और फिर इसी तरह फरमाया कि किसी की गर्दन पे सवार बकरी हो और वो मिमिया रही हो, वो कहे या रसूलल्लाह मेरी मदद करे, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूं। हाँ उसकी गर्दन पे सवार कोई कपड़ों की गठड़ी हो जो हिल रही हो, तो वो कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाए, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं। एक्चुअली उस जमाने में इन्हीं चीजों की ट्रेडिंग होती थी, इन्हीं चीजों के ये ऊंट हैं या ये बकरियां हैं या ये कपड़े वगैरह का कारोबार होता था। तो आपने फरमाया ये ना हो कि कयामत के दिन ऐसे तुम आके मुझे कहो और मैं वहां पे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, फिर कि तुमने दुनिया में इन चीजों पे खयानत की हो और एक शख्स को इस हाल में मैं ना पाऊं कि उसकी गर्दन पे सोने और चांदी हो और वो कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद करे, मैं कहूंगा मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं, मैं तुझे तबलीग कर चुका। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरी जिम्मा हो जाएंगे उस दिन, मैंने तुम्हें बता दिया था ना, और दुनिया में हमें वॉर्न कर दिया कि ये ना हो तुम ये कहते हुए आओ उस दिन। खयानतें बहुत तरह से होती हैं माल में। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, अब ये हदीस से हम देखते हैं कि मुस्लिम में ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू असद के एक शख्स को सदकात वसूल करने के लिए आमिल बना के भेजा। क्या होता था उस जमाने के अंदर, सदका जकात कलेक्शन के लिए हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो लोगों के पास जाते थे और जकात या सदकात उनसे लेके आते थे, रिसीव करते थे उनसे। तो जब वो सदकात वसूल करके आया तो उसने आके कहा ये तो आपका है, ये इतना माल ये आपका है और ये माल उसने मुझे तोहफे में दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होके पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई, इसके बाद फरमाया जिन आमिलों को मैं भेजता हूं उनको क्या हो गया है, वो कहते हैं ये आपके लिए और ये मुझे हदिया दिया गया, ये आदमी अपने बाप या अपनी माँ के घर में जाके क्यों नहीं बैठ गया था, फिर हम देखते कि उसको हदिया दिया जाता है या नहीं। ठीक है ना, फिर फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से जो शख्स भी सदकात में से कोई चीज लेगा कयामत के दिन जब वो आएगा तो वो चीज उसकी गर्दन पे सवार होगी, ऊंट बड़बड़ा रहा होगा, गाय होगी डकार रही होगी, बकरी मिमिया रही होगी। उस वक्त में ना इन चीजों को जकात में दिया जाता था, कोई ऊंट देता था कोई बकरी, क्योंकि यही रेवड़ होते थे उनके पास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, इतने ऊपर किए कि आपकी बगलों की सफेदी हमें दिख रही थी, फरमाया दो दफा ए अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, यानी अब इनके ऊपर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में आता है, फरमाया हमने तुम में से जिस शख्स को किसी मनसब का आलिम आमिल बनाया और उसने कोई सुई या इससे छोटी कोई चीज भी हमसे छुपा ली तो यह खयानत, जिसको क्यामत के दिन वो लेके आएगा। यानी आप माल की कलेक्शन के लिए उसको अगर बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव या कोई ओहदा किसी को मिला हुआ है, अब वो जब किसी ने कोई किसी बड़ी सीट पे होता है ना तो लोगों ने जब अपने काम करवाने होते तो वो क्या कहते हैं, ये आपके लिए ये तोहफा है, ये आपके चाय पानी का खर्चा है, ये आम की पेटियां आपके लिए लाए हैं, ये बच्चों के लिए मिठाई है। अब वो क्या है, उसके अंदर ये सारी रिश्वत होती है। वो बंदा क्या उस सीट पे ना बैठा होता तो क्या ये लोग देते उसको, कभी भी नहीं देते थे, कभी भी नहीं देना था ना, था इसका मतलब है ये हराम है, जो उस सीट की वजह से किसी को दिया जा रहा है वो हराम माल है, और हराम माल यानी ये खयानत है, उस बंदे ने उस ओहदे की वजह से वो चीज पाई है। अब आप सोच लें कि इसके बाद ऐसे इंसान के लिए वो चीज कयामत के दिन वबाल बन जाएगी। हमारे यहाँ इस किस्म की बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मसलन है खयानत जमीनों में, खयानत जमीन में खयानत भी करना, यानी अपनी तरफ थोड़ी सी जमीन मिला ली, हदीस में आता है कि सबसे बड़ा खयानत करने वाला वो है जो शख्स पड़ोसी के खेत की जमीन या उसके घर की जमीन दबा ले, यानी अपनी दीवार खड़ी करनी थी थोड़ी सी आगे बढ़ा ली, थोड़ी सी बस। फरमाया अगर एक हाथ जमीन भी ना हक अपनी तरफ कर लेगा तो सातों जमीनों का तौक उसको पहनाया जाएगा। एक नहीं, सात जमीनें उनका तौक बना के, तौक समझते हैं एक नेकलेस समझ लें, उसके गले में डाल दी जाएंगी। एक और हदीस में इस तरह आता है, सिलसिला सहीहा की है, कि किसी भी शख्स ने अगर जुल्म करते हुए बालिश्त भर, बालिश्त कितनी होती है, ये हैंड, ये हाथ, एक हाथ, इतनी जमीन हथिया ली, चाहे वो गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट की तो जमीन आराम से हथिया लेते ना, बस यहां तक अपनी दीवार बनानी थी जरा आगे कर ली, तो अल्लाह ताला उसे इस बात का मुकल्लफ बनाएंगे कि वो उसे सात जमीनों को खोदेगा, वो सात जमीनों तक खोदे, ये उसको कहा जाएगा, फिर उसका तौक बना के कयामत तक उसके गले में डाल दिया जाएगा, जब तक लोगों का फैसला नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब ये है कि जब वो मरेगा तो उसके बाद ही इसका ये शुरू हो जाएगा, कयामत तक उसके साथ यही होगा कि उसको ये तौक को अपने गले में डाले रखेगा। हमसे तो जरा सी ग्रोसरी उठा के ले जानी कहीं हो तो मुश्किल हो जाती है, सातों जमीनों का तौक अंदाजा करें। एक एक हदीस में आता है जिसे हम हाकिम बनाएं, अगर उसका घर ना हो तो वो घर बना सकता है, बीवी ना हो तो बीवी कर सकता है, शादी कर सकता है, इसके सिवा अगर कुछ और लेगा तो खाइन होगा। और हमारे हाल क्या होते हैं, जिस वक्त हमारे पास ओहदा नहीं होता उस वक्त वो कैसे घर में रह रहे होते हैं, जब ओहदे से रिटायर होते हैं उसके बाद तो देखें कि घर की शान और शौकत और बिजनेसेस और कहाँ कहाँ क्या क्या मिल चुका होता है। वो किस वजह से आया, उस ओहदे की वजह से आया ना, मैंने आपको अभी हदीस बता दी कि ये बंदा इस जगह पे ना होता, अपने माँ बाप के घर बैठा होता तो क्या इसको ये मिलता, नहीं मिलता ना, तो वो खयानत है उसके लिए। ये हदीस है, अल्लाह माफ करे। इसी तरह ये तो जमीन हथिया लेने की बात है, कभी कभी लोग किराए के घर लेते हैं और फिर उनको छोड़ते ही नहीं है, फिर उनको छोड़ते ही नहीं, समझते हैं बस ये हमारा ही हो गया, अब इसके अंदर तो हमारा कब्जा है, जायज है हमारे लिए। बाज दफा इसी तरह लोग किराए के घरों का बुरा हाल कर देते हैं, और वो क्या होते हैं, वो भी एक खयानत है, अमानत थी उसके पास ना वो चीज, और उसमें खयानत की। इसी तरह कभी कभी किसी मजदूर को मजदूरी ना देना और उसको डिले किए चले जाना, हदीस में आपको पहले बताती हूँ फिर इब्ने उसैमीन की बात, कि हदीस में आता है कर्ज अदा करने में साहिब हैसियत का टाल मटोल करना जुल्म है, यानी साहिब हैसियत है उसके पास है भी पैसे लेकिन वो कर्ज नहीं दे रहा वापस, टाल मटोल करता जा रहा है, टाल मटोल करता जा रहा है, और ये सोच रहा है कि जिस वक्त मैं दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, और एक दिन सोचता है अब तो मैं इतने कम भी दे दूं तो कोई बात नहीं, अब तो इसको गनीमत समझना चाहिए कि मैंने दे भी दिया, अब मेरे कम देने में कोई हरज नहीं है, या फिर मैं ना ही दूं तो तब भी ठीक है, या थोड़े दे के इसको टरखा दूं कि चल अब इतने पे ही तू खुश हो जा, शुक्र कर मैंने कुछ तो तुझे दे दिया। तो ये सब इसमें आता है कि ये जुल्म है। फरमाया इब्ने उसैमीन ने इस हदीस की शरह में कि ये हक पूरा का पूरा अदा करना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे आज दे या 10 दिन बाद या 10 साल बाद। हम तो जैसे वक्त वक्त गुजरता जाता है तो हम सोचते हैं अब तो इतनी जरूरत ही नहीं देने की। इसी तरह खयानत ये भी है जो मीरास में की जाती है, विरासत जब नहीं तकसीम की जाती, एक ही समझ लेता मैं ही सारा कब्जा कर लूं, ये भी खयानत है, दूसरे की अमानत है ना वो चीज, वो दूसरे का हक है, आपने वो हक मार लिया। बहुत सारी बेटियां ऐसे करती हैं कि उनकी माएँ फौत हो तो जाके पहले पहले ही उनके जेवरों पे कब्जा कर लेती हैं, जेवर, और ये जेवर मेरा, ये मेरी बहन का, ये मैं उसका, भाइयों को हमारे क्या इसकी जरूरत है, तो ये खयानत है। जो भी माल है सारा का सारा विरासत है, सुई तक विरासत में तकसीम होती है, तो वो सारी चीजें उठा के पहले ही जमा कर लेती हैं कि ये हमारी फेवरेट है, ये हमारी फेवरेट है। इसी तरह खयानत बहुत तरह चीजों में होती है, मिसाल के तौर पे जो दफ्तर की चीजें हैं उनको इस्तेमाल करना, वो प्रिंटिंग करना, उससे चीजें करना, ये भी खयानत है, क्योंकि वो इस चीज के लिए नहीं है, उन्होंने तो आपको इसलिए दी भी थी कि आप अपने दफ्तर के काम करें उससे। घर के कामों के लिए तो नहीं दी हुई थी उसमें, कितनी उस स्टेशनरी को यूज करते हैं बहुत से लोग। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त जा रहे थे, तो अबू राफे फरमाते हैं कि वहां कहीं जा रहे थे तो बकी के करीब से गुजरे, तो फरमाया तुफ है तुझ पे, तुफ है तुझ पे। तो कहते हैं कि मैंने समझा कि मुझे कह रहे हैं, तो मैं पीछे हो गया जरा। तो आपने फरमाया क्या बात है? तो मैंने कहा या रसूल्ला आपके इस कहने की वजह से मैं रुक गया कि पता नहीं मैंने कुछ किया ऐसे। आपने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा बल्कि ये कब्र वाले आदमी को कहा है कि इसे मैंने एक कबीले की तरफ आमिल बना के भेजा था, उसने एक चादर ले ली थी, वो चादर अब आग बन के इसके ऊपर भड़क रही है। तो सोचें कितनी सख्त मुश्किल का वक्त, यानी कब्र के अंदर उसके लिए अजाब का सबब बनी वो चादर। हशर में भी ये होगा जैसे मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर लेकर आएगा उस चीज को कयामत के दिन। यहाँ पे ये इसका प्रूफ मिल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयानत से बचो, खयानत करने वाले की रुसवाई कयामत के दिन होगी, सुई धागा तक पहुंचा दो। सुई धागा यानी कितनी मामूली चीज है, हकीर चीज भी जो कोई हो वो भी आपकी नहीं है, आप उसको दे दें इससे पहले कि कयामत के दिन उसके ऊपर बबा लो। इब्ने मरदवे में ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई पत्थर जहन्नुम में डाला जाए तो 70 साल तक चलता रहेगा लेकिन तय को नहीं पहुंचता। खयानत की चीज को इसी तरह जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, फिर खयानत करने वाले से कहा जाएगा जाओ अब उसको लेके आओ। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला खयानत करने से महफूज रखे। तो फरमाया सुम्मा तो वफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर उनको पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाई की, और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे। यानी कयामत के दिन वो उनको जो भी उन्होंने खयानत की होगी वो लेकर आएगा। मगर ये ना समझना कि नबी कभी खयानत कर सकते हैं, क्योंकि नबी कभी खयानत नहीं कर सकता, उसकी शान के ही नहीं लायक है। और फिर फरमाया अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाह कमन बा बिसखत मिन अल्लाह, तुमने क्या समझते हो जो अल्लाह की रजा की पैरवी करने वाला है उसके बराबर हो सकता है जो उसकी नाराजगी का कोई काम करे, अल्लाह की नाराजगी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करके पलटे? या पिछले कॉन्टेक्स्ट में बात समझी जाए तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम से तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऐसी कोई काम करें। आम मोमिन भी, आम मोमिन भी वो अल्लाह की रजा की जो पैरवी करता है, जो अल्लाह ताला के कहने पर चलता है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता जो अल्लाह की नाराजगी का काम करे। तो नबी को तुम कैसे ये सोच सकते, या ये भी आप कह सकते हैं कि भला नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की रजा पे चलने वाले हैं उसके बराबर हो सकते हैं जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ काम करे यानी जो खयानत करे? तो तुमने कैसे सोच लिया? कमम्बा भी सख्त मिन अल्लाह, यानी इसका मतलब खयानत अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो दो किरदार हैं ये, तुमने कैसे सोच लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के हो सकते हैं कि वो अल्लाह की नाराजगी का कोई काम करेंगे? वाहु जहन्नम, जो ऐसा है जो अल्लाह की नाराजगी के साथ पलटता है वो तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब असल मसीर कितनी बुरी है लौटने की जगह। अब आप देख लें ये जो खयानत करने वाली मैंने आपको हादीस बताई है ना, ये सारे मुसलमानों की बातें हैं, काफरों की बातें नहीं हो रही। हम तो अपनी नमाज रोजों से ही समझ लेते ना बस हमारा दीन जी कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद नहीं कोई चीज की जरूरत। हालांकि आप देखें कि खयानत अगर कोई करेगा तो अब नमाजें हैं उसकी और वो सारी तो एक तरफ रह गई, उसको भुगतना पड़ेगा। सुम्मा तो वफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, जो उसने कमाई की है पूरा पूरा उसको दिया, बदला दिया जाएगा उसका। हम दराजात, और ये जिन जिसका मैंने अभी आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसको आमिल बना के भेजा था, जाहिर है मुसलमान ही था वो, और अब उसके ऊपर आग बनी हुई है वो चादर कब्र में। कब्र का अजाब भी एक मुसलमान को ही हो रहा था। तो ये जो माली मामलात है ना, इनमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है कि हमसे कहीं खयानत ना हो जाए। कुछ तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स और हैं जो हम जिंदगी में तलाश कर सकते हैं कि जहां पे खयानतें होती हैं। हम दरजात उन इंद अल्लाह, वो दर्जों में अल्लाह के नजदीक। कौन दर्जों में है? यानी हर एक के दर्जे मुख्तलिफ हैं, हर एक के दर्जे अल्लाह ताला के, हाँ जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं उनके भी दर्जे हैं। सबसे ऊपर के दर्जे पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वलिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, हर एक के दर्जे, सूरह नाम में अल्लाह ताला ने फरमाया हर एक के दर्जे हैं, जिस मुताबिक उसने अमल किया उसके मुताबिक है। तो जो अल्लाह की रजा चाहते हैं उनमें भी हर एक का रैंक सेम नहीं है, कोई टॉप पे है, और जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं उनमें भी डिफरेंट रैंक्स पे हैं लोग। अब हम सारे पढ़ने वाले हैं, हम सारे मुसलमान हैं, हम सारे कुरान पाक के तालिब इल्म हैं, लेकिन हम में से हर एक का रैंक सेम थोड़ी होगा, हर एक अलग अलग दर्जों पे होगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह देख रहा है, वो उसको खबर है, वो खुद वॉच कर रहा है जो भी वो अमल करते हैं। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह ने मोमिनों पर। अल्लाह ताला ने इतने हमारे पर एहसानात किए हैं उनको हम गिन भी नहीं सकते, मगर किसी चीज को भी अल्लाह ताला ने कुराने पाक में मन नहीं फरमाया कि मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, मगर एक चीज को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरा एहसान है ना। कहा आंखें मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, जिंदगी मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, सेहत मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें दी, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? क्या एहसान है? इज बाअथा फीहिम रसूल, जब भेजा उनमें एक रसूल, तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूल भेजा, ये उसका एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक भी बहुत बाबरकत है, बहुत रहमत है लिल आलमीन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एहसान कहा गया, आपकी जात को नहीं कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल उन्हीं में रहते थे, उस वक्त को नहीं कहा गया। जो आपको रसूल बना के भेजा गया वो एहसान है। क्यों? इसलिए कि जब आप रसूल बन के आए हैं तो तब आप लोगों को जोड़ने वाले बने अल्लाह के साथ, लोगों को हिदायत का रास्ता बनाने बताने वाले बने, तब आप सिराते मुस्तकीम की पहचान कराने वाले बने, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को इंसानियत तक पहुंचाया और रिसालत का हक अदा करके पैगंबर बने। तो ये है अल्लाह का एहसान कि उसने एक रसूल भेजा जो तुम्हें ये अल्लाह ताला की पहचान भी कराए, उसकी बातें भी बताए, वो किस में राजी होता है, किससे नाखुश होता है, जहन्नुम का रास्ता कौन सा है, जन्नत का कौन सा है, और सिर्फ बताए नहीं, वो करके भी दिखाए, करके भी दिखाए, अमली नमूना भी पेश करें। और सिर्फ यही नहीं कि अमल भी करके दिखा दिया, बता भी दिया, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, इससे अल्लाह खुश होता है इससे नहीं खुश होता, सिर्फ ये नहीं किया, मोटिवेशन भी दी, उनको उभारा भी, उनको तैयार भी किया, उनकी तरबियत भी की जो आगे आ रहा है। तो अल्लाह का ये एहसान है कि उसने एक रसूल भेजा मिन अनफुसिम, उनके अपने नफ्सों में से, यानी कोई जिन्नों में से नहीं भेज दिया, फरिश्तों में से नहीं भेज दिया, इंसानों में से भेजा। वरना हम कहते हैं ये देखो तो ये तो फरिश्ता है, ये तो कर ही सकता है, हम तो कर नहीं सकते। तो अल्लाह का एहसान है तुम में से भेजा, इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम, सूरह कहफ एंड इस पे होती है, मैं बशर हूं तुम्हारे जैसा, बस ये कि मेरे ऊपर वही आती है, तो तुम्हारे अपने अंदर से थे। अब आजकल यही झगड़ा खत्म नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे कि बशर थे, नूर थे कि बशर थे। ओ भाई देखो, नूर कौन सी, नूरी मखलूक कौन सी है? फरिश्ते। फरिश्ते अफजल हैं कि इंसान अफजल है? अल्लाह ने तो फरिश्तों को सजदा करवाया कि वो इंसान को सजदा करें, तो इंसान अफजल हुआ ना, बशर अफजल हुआ। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरी मखलूक क्या के उनको फरिश्ता बना दिया, तो वो तो इंसान से कम तर दर्जा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर होते हुए ये सब इस आला मकाम पे पहुंचे, यही तो बड़ी शान है। नूरी मखलूक की कौन सी बड़ी शान है? इसीलिए उनके लिए तो कोई जन्नत नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, उनके अंदर तो ये एबिलिटी ही नहीं है। तो इसलिए मिन अनफुसिहिम से पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे। यतलु अलैहिम आयाती, उनका क्या काम था? सबसे पहला काम तिलावत करें वो इन पर आयात उसकी, अल्लाह की आयात पढ़ पढ़ के सुनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कुरान की तिलावत की, लोगों को बताया, सहाबा कराम जो कातबीन है वही थे, उनको बताया ये आयत फलां सूरत में फलानी जगह पे लिखो, ये आयत फलानी जगह, यानी जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये तरतीब भी अल्लाह की तरफ से, ये बेशक उस तरह से नाजिल नहीं हुई, पहले सबसे पहले सूरह बकरा तो नहीं नाजिल हो गई थी, वो तो मदनी सूरत थी, लेकिन सेकेंड नंबर पे है कुरान में, ये किसने यहाँ पे रखवाई, इस आयत के बाद ये आयत आएगी कि किसने बताया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये भी अल्लाह की तरफ से। और आप पढ़ के सुनाते थे कि किस तरह से पढ़ना है इसको, इन आयात को। इसलिए जो कुरान भी है ना, जो लोग कहते हैं हम हदीस नहीं मानते, और खुदा के बंदो कुरान क्या है, ये भी तो मुतवातिर हदीस है, ये किसकी जुबान से अदा हुआ, आपको कोई पहाड़ पे तो नहीं पढ़ा मिल गया था, ये भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ही अदा हुआ, तो उसको मानते हो, कहते हदीस नहीं माननी, तो ये हदीस ही तो है, जैसे बाकी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली, इसी तरह कुरान भी निकला। जब आपकी बातों को ही तुमने निगेट कर दिया, तो कि तुम कुरान को भी फिर निगेट करो, कुरान को कहते नहीं कुरान ठीक है, हालांकि वो भी उन्हीं जात से आया, और हदीस हम नहीं मानेंगे, वो भी उन्हीं जात से आई है। तो यतलू अलैहिम आयात ही, उन्होंने पढ़ना सिखाया कुरान का, इसलिए कुरान को सिखाया, जिसकी तिलावत सिखाई, इसको बताया, इसीलिए हम सबको कुरान पाक सही पढ़ना आना चाहिए, सही पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया ऐसे ही पढ़े हम, इसको खोल के बयान किया। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासिद में से एक मकसद था, रिसालत के मकासिद में से, कि आप कुरान पहुंचा दें। अब हम पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो नहीं, आज तक आजकल लोगों की इतनी गलतियां भी होती रही, कहते हैं वो हम ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, वो भाई ट्रांसलेशन उस तरह तो नहीं है ना, ट्रांसलेशन अल्लाह के अल्फाज नहीं है, ट्रांसलेशन को आप कुरान नहीं कह सकते, याद रखें। इसीलिए एक वो होता है ना, एक कॉपी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशन लिखी होती है, उसको कुरान ना कहा करें, कुरान का तर्जुमा हो सकता है, कुरान नहीं है, कुरान वही है जो ये अरबी अल्फाज है जो अल्लाह की तरफ से है, बस इनको सही पढ़ना आना चाहिए। वह युज़क्कीहिम, और उनका दूसरा एक और काम क्या था, तज़किया करें, पाक करें, ट्रेनिंग करें सहाबा कराम की, उनकी तरबियत करें, ऐसे ही तो नहीं फिर उसके बाद सहाबा कराम कैसे उन्होंने कह कारनामे अंजाम दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग में रो रहे थे। और कैसे पाक करने का मतलब क्या है, पाक करने ऐसे है कि जैसे आपका आपका गार्डन है, ठीक है, अब इस गार्डन के अंदर आप देखें, आप एक माली रखते हैं, वो क्या करता है, वो उसमें से झाड़ झंकार निकालता है, वो पौधों को पानी देता है, वो वीड्स को खत्म करता है, वो फालतू जड़ी बूटियां उनको निकाल देता है, वो कटिंग करता है पौधों की, वो उनको सही ट्रिम करता है, कितनी ये चीजें हैं ना जरूरी। इसी तरह रसूल जो है वो ऐसे शेप देता है कैरेक्टर्स को लोगों के, कहाँ पे गलतियां हैं ये निकालनी है, कहाँ पे ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है ये खत्म करो, ये ऐसे करो, इसको इस काम को इस तरह करो। सबसे पहले ये कि शिर्क से पाक करता है, बिदात से पाक करता है, और शकुक शुभात जो आते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दीन के बारे में, उनसे पाक करता है, ऐसी तमाम बातें जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी की हैं उनसे लोगों को पाक करता है, तो वो तज़किया का काम करता है रसूल। और जब तज़किया होता है तभी इंसान की पर्सनैलिटी खूबसूरत होती है, जैसे बाग खूबसूरत तभी लगता है ना जब माली उसकी निगहदाश्त करता है, और तज़किया सोहबत से आता है, कि इंसान किसी की सोहबत में रहे वो फिर उसको आता है। आजकल तज़किया का तो खैर क्या कहना, कोई किसी को अगर कह दे कि भाई आपके अंदर ये चीज़ सही नहीं, इसको सही कर लें, तो वो तो कहता है ये तो पता नहीं आपने, तो क़यामत ही आ गई बस, फिर वो तो छोड़ेगा ही नहीं। वो तज़किया भी, ये भी हिम्मत वाले लोगों का काम है कि वो अपने लिए तस्किए के लिए सोचें, जहाँ पे हर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता हो वहाँ पे क्या तस्किए का अमल हो सकता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और वो सिखाता है उनको किताब और हिकमत, यही आयत हम इसी तरह से पहले पढ़ भी चुके हैं सूरह बकरा में। और वो तालीम देता है उनको किताब की, यानी तालीम क्या देना होता है, तालीम देना ये कि उनको सिखाता है, समझाता है, ये जो हमें सारी बातें, मसलन है कुरान पाक में 700 दफा आया नमाज पढ़ने का हुक्म, 700 दफा, अब नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के औकात क्या है, नमाज की रकतें कितनी है, नमाज के किस रुकन में कौन सी तस्बीह पढ़नी, कौन बताएगा हमें। ये है रसूल का काम कि वो तालीम दे किताब की, वल हिकमा, और हिकमत से मुफस्सरीन ने कहा इसका मतलब है हदीस। सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो हिकमत कहलाती है, क्योंकि उसमें सारी हिकमत ही है, वो विजडम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरामीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, आपने जो जिस तरह से करके दिखाया, ये सब हिकमत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को सिखाते थे। तो आपने सिर्फ किताब नहीं सिखाई है, हिकमत भी सिखाई है। और ये जो तीन काम है, अगर ये ही नहीं किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए और सोचा कि ना हमें तो तज़किए की ज़रूरत है, ना हमें को तिलावत सही करने की ज़रूरत है, ना हमें कुरान और हदीस की तालीम की ज़रूरत है, तो उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में से क्या लिया फिर? कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो करने ही आए थे, आपका मकसद रिसालत ही ये था। और इसी बात पे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का एहसान है, वह इन कानू में कबल फी दलाल मुबीन, इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। वो आया नहीं पहले, हमने पढ़ा वकुन तुम अला शफा हफरतिन मिन अन्नार, वो तो तुम तो किनारे पे थे आग के, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले क्या थी? गुमराही थी, लोग शिर्क में मुबतला थे, जहालत, और कैसे कैसे कबीरा गुनाह करने वाले थे। अल्लाह ने रसूल भेज के एहसान किया तुम्हारे ऊपर, तो ये बहुत बड़ा एहसान है। अब जो एहसान हुआ वह, अब इस एहसान के बाद होना क्या चाहिए कि इस एहसान को एहसान समझा जाए और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने उनको भेजा उसको पूरा किया जाए। अब वो तो मकासिद ये हैं, लेकिन आज अगर तिलावत कुरान की बात आती है, तालीम कुरान की बात आती है, तालीम हदीस की बात आती है, तो कहते हैं कहाँ पे फर्ज लिखा हुआ है ये? ओ भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मकसद रिसालत ही ये था, अब कहाँ लिखा हुआ ये? वो तो करने ही ये काम आए थे, वो इसलिए नहीं आए थे कि आप उसके उनके जाने के बाद उनकी मिलादें करें और उनकी नातें पढ़ें, तो इसलिए तो नहीं आए थे वो, आपको ये चीजें की तालीम देने के लिए आए थे। और ये चीजें उनसे सीखनी ही नहीं, हम अपने आप को जो बहुत बड़ी इल्म वाले समझते हैं, हम कहते हैं नहीं, हमें कुछ से नहीं सीखने की जरूरत। जब ये हम पढ़ रहे होते हैं, ये तफसीर जो है ये क्या है? तालीम है किताब की। इस ये जो आयात की तशरीह क्या है? ये तालीम है किताब की। लेकिन अगर यही हम नहीं सीखना चाहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया है उस तरह नहीं समझना चाहते, हम अपने अपने तरीके करना चाहते हैं, तो फिर बताएं कि हमने कैसे इस एहसान को की जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया, इसकी हमने क्या एहसान मंदी, इस एहसान को हमने क्या समझा फिर? अवलम्मा असाबत को मुसीबत कद असब तुम मिथलैहा, और भला जब पहुंची तुमको कोई मुसीबत तो तहकीक पहुंचाई तुमने भी इससे दुगनी। जब तुम्हें उहद में मुसीबत पहुंची है तो तुम अब कहने लगे कुल तुम अन्ना हादा, तो तुमने कहा ये कहाँ से हमारे पर आ गया, ये क्या हो गया हमारे साथ? क्योंकि सहाबा कह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर मौजूद हैं, और बदर में हमने 313 की तादाद भी थी, इतनी कम तादाद थी, फिर भी हम जीत गए थे, तो ये हमारे साथ हुआ क्या? ओ माई गॉड, ये क्या हो गया? यानी वो परेशान और हक्का बक्का हो गए। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली कैसे दी है? तुम्हारे पर अगर कोई मुसीबत पहुंची है तो तुमने भी तो उनसे उनको डबल पहुंचाई है। कैसे डबल पहुंचाई? देखिए, बदर के अंदर उनके 70 बड़े बड़े, मैंने आपको बताया था, सरदार जो थे वो मारे गए थे, और 70 उनमें कैदी बना के लाए गए थे। ओहद में एक बंदा भी कैदी नहीं बना मुसलमानों में से, एक भी उनके पास नहीं कैद होके गया, बल्कि जो 70 शहीद हुए थे लेकिन एक भी वो अपने साथ नहीं ले जा सके। तो तुमने डबल उनको नुकसान पहुंचाया था, अब तुम कह रहे हो ये कैसे हो गया? कुल, आप ए नबी इनको कह दें, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से है, ये जो मुसीबत तुम्हारे पर आई है ना, ये अपनी गलती का नतीजा है। और हम देख लें क्या गलती उन्होंने की थी, हम पहले ये बात कर चुके हैं। यानी इससे पता चलता है कि इंसान की अपनी गलतियां ही होती हैं जिसकी वजह से ऐसे उसके ऊपर मुसीबतें आती। और यहाँ पे गलती क्या थी? रसूल की नाफरमानी हो गई थी, उनका हुक्म तोड़ा गया था। और मैं आपसे पहले भी ये बात की थी कि एक हुक्म रसूल का तोड़ा कितना बड़ा एक झटका लगा मुसलमानों को। इतनी बड़ी एक मुश्किल उनके ऊपर आ गई, और जहां पे सारी सारी जिंदगियां हुक्म तोड़ने में ही लगी हैं, वहां पे क्या होगा? जहां पे दूर दूर तक पता ही नहीं है कि ये कोई 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 रत्ती बराबर भी निशान नहीं मिलता कि ये कोई नबी की उम्मत है, वहां पे क्या होगा? वहां पे रहमतें आएंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तुम्हारी गलतियों के बावजूद तुम्हें फतह दे देता, वो चाहे शिकस्त को फतह में बदल दे, फतह को शिकस्त में बदल दे, लेकिन उसने तुम्हें बताना था ना कि ये रसूल की नाफरमानी हुई है, ये एक जुर्म है, और जब रसूल की नाफरमानी होगी तो थप्पड़ पड़ेगा। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूं कि जब जब ऐसा होगा यही काम होगा, जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी, उनको रसूल की नाफरमानी पे ये भुगतना पड़ा। तो 1400 साल के बाद क्या रसूल की नाफरमानी पे बड़ी नेमतें मिलेंगी? फिर जब 1400 साल बाद भी यही काम होंगे, और एक नाफरमानी नहीं, रसूल के तो एक एक हुक्म को तोड़ा जा रहा है, एक एक हुक्म को जिबा किया जा रहा है बेदर्दी के साथ, बेदर्दी के साथ। यहां पे तो उन्होंने एक तावील की थी ना, एक गलती होगी। आज बेदर्दी के साथ रसूल के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है, जो मर्जी कहा जाए हमें क्या है, हमने तो वही करना जो हमारी मर्जी है, जो हमारे रस्म और रिवाज है, जो लोग कर रहे हैं आजकल, हम तो वही करेंगे, और ढीठ है इसके ऊपर, एंड डोंट केयर। आज सुन्नतों को छोड़ना, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को कुछ समझना, ये कोई जिंदगी का हिस्सा भी रह गया कि नहीं? सोचें, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में फरमाया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फहाशी के बारे में फरमाया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत के बारे में फरमाया, हराम माल के बारे में फरमाया, नजरों की हिफाजत के बारे में फरमाया, ईमान के बारे में फरमाया, गुनाहों के बारे में क्या फरमाया? हमें कोई परवाह है? एक एक हुक्म को तोड़ा जा रहा है, और घर घर नाफरमानियां हो रही हैं, और धड़ल्ले से हो रही हैं, घर घर दफ्तरों में हो रही हैं, हुकूमतों में हो रही हैं, बिजनेसेस में हो रही हैं, जॉब्स में हो रही हैं, कहाँ कहाँ नहीं हो रही बताएं? कलेक्टिव भी हो रही हैं, इंडिविजुअल भी हमारी जिंदगी में हो रही हैं, और फिर कोई एहसास भी नहीं है कि कोई नाफरमानी हम कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं। याद रखें, जब मुसलमान फिर ये करने लगेंगे ना, तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना फिर, और वो भी गैर कौमों से पढ़ेंगे। यहाँ पे किसने थप्पड़ मारा? काफरों ने, वो तो अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं करते थे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, अन्ना हाजा, ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया हमारे साथ, यही कहा था ना उन्होंने, और यही आज हम कह रहे हैं ना, अन्ना हाजा, अरे ये हमारे साथ कैसे हो गया, मुसलमानों के साथ ये कैसे हो गया, हाँ ये क्यों हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये जवाब ले लो, यहाँ पे पता चल रहा है, हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारी अपनी वजह से है, अपनी वजह से, अल्लाह नहीं जुल्म करता किसी पे, ये तुम्हारी अपनी वजह से है, तो गिरेबानों में झांके हम अपने हैं। देखेंगे क्या आपकी फरामीन है, पता ही नहीं फरामीन क्या, किसने जानना फरामीन क्या होते फिरे, हमें तो अल्लाह के हुक्मों का नहीं पता, हमने तो कुरान नहीं आज तक पढ़ा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हदीस तक कौन पहुंचे, वहां तक किसने परवाह की? हमें तो अल्लाह ताला फरमा दें कि ला तकूलू, तो हमें क्या परवाह, अल्लाह ने फरमाया ला तकूलू, ना तुम ये कहना ना तुम ये करना, हमें उसकी नहीं परवाह, हदीस की तो क्या हम परवाह करेंगे। तो देख लें फिर के हमारी अपनी ही वजूहात हैं, जो आज जिल्लतें हैं, जो आज शिकस्त है। किसी को ब्लेम ना करें, अपने आप को ब्लेम करें, अपना पहले, तो कहते हैं ना कि किसी ने दुनिया को चेंज करना है तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करें। दुनिया नहीं चेंज हो सकती ऐसे कि आप अपने तो डगर पे चलते रहे और कहें हाय दुनिया सारी नेक और पाक और साले हो जाए। वमा असाबकुम यौमल तकल जमानी फबी इज़्निल्लाह। ये जो तुम्हें पहुंची है ना दो जमातों के मिलने पे, जो भी तुम्हें पहुंचा यानी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा, जो भी तुम्हें शिकस्त उठानी पड़ी, फबी इज़्निल्लाह, तो अल्लाह के इज़न के साथ हुआ ये सब कुछ। क्योंकि अल्लाह के इज़न के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्यों हुआ अल्लाह का इज़न, ऐसा क्यों हुआ कि ये नुकसान उठाना पड़े? इसलिए वलियालम अलमोमिनीन वलियालम अल्लदीन नाफकू, इसलिए ताकि वो जान ले मोमिन तुम में से कौन है, कौन है तुम में से जो मुनाफिक है। निफाक और ईमान खुल के सामने आ जाता है जब हालात ऐसे होते हैं। याद रखें इंसान का सबसे बड़ा टेस्ट ही तब होता है जब उसके ऊपर मुसीबत होती है। नॉर्मल हालात में तो सारे प्रिटेंड कर भी लेते हैं, सारे बस अल्लाह अल्लाह कर भी लेते हैं, लेकिन जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूटता है, कोई ऐसा काम जैसे अब यहाँ पे इनको, तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। आप देख लें, आप यहाँ पे कोई कहने लगे लो हमारे पास होते तो मरते तो ना, ये क्या हो गया, अब इन्होंने तो सही फैसला ही नहीं किया था, देखो और बाहर जाके लड़ो, हमारी बात नहीं ना मानी थी। ये सारी बातें पता चल गया ना मुनाफिक कौन है, वो जो वापस लेके चले गया कि मेरी बात नहीं मानी, और वो भी आके फिर वापस गया, अगर मदीने पे बैठ के कह देता कि भाई मैं आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने नहीं जाना साथ, लेकिन ही मेड श्योर कि वो साथ भी जाए और फिर रास्ते से वापस आ जाए ताकि दूसरों का मोरल तो डाउन हो ना। तो फरमाया तो पता कैसे चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा? ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने ये इसलिए ही किया ताकि पता चल जाए ईमान वाला कौन है, कौन अल्लाह पे भरोसा करता है, कौन फिर उठ जाता है, कौन फिर अल्लाह से अच्छे गुमान ही रखता है, और कौन अल्लाह से बदगुमान हो जाता है, चिकुए करने लगता है, आए हमें पता नहीं मरने के लिए यहाँ पे बुला लिया था। सूटेबल हालात में नहीं, अनसूटेबल हालात में इंसान की जो अंदर है ना वो बाहर आ जाता है। अल्लाहु अकबर। वकील लहुम तआलौ कातिलू फी सबीलिल्लाह अव इदफाउ। अब जब वो जा रहे थे वापस, ये जो 300 मुनाफिकीन को लेके अब्दुल्ला बिन उबई जा रहा था अपनी टीम को लेके, तो उनको फिर कुछ बाद साहबा ने समझाया भी, उनने कहा तुम किधर जा रहे हो, तुम हमारे साथ चलो जंग करो, हमारे साथ अल्लाह के रास्ते में लड़ो, या फिर चलो ये नहीं कर सकते दिफा ही कर लो, मदीने को डिफेंड ही कर लो, मदीना तो हम सबका ही है ना। फालू, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, लो नालमु कितालन लतबाना को, अगर हम जानते होते जंग करना तो हम तुम्हारे पैरवी कर लेते, हम तुम्हारे साथ चल पड़ते। क्या मतलब है इस बात का? नंबर 1 इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि लड़ाई तो होनी है नहीं, लड़ाई होनी होती तो हम भी तुम्हारे साथ चले जाते, हमें पता है होनी होनी कुछ नहीं है तो हम क्यों जाएं। नंबर 2 इसका मतलब है हमें लड़ाई करनी आती होती तो हम चल ही पड़ते, मगर माजरत है हमें लड़ना नहीं आता। और नंबर 3 इसका मतलब ये है कि हमें पता है जी वो जो आ रहे हैं ना वो भी तुम्हारे भाई बंद ही हैं, असल में तुम लोग आपस में मिले हुए हो, तो वहां पे जाके लड़ना तो तुमने कुछ नहीं, हमें ही मरवाओगे तो हमने नहीं जाना, तो लड़ाई तो होनी नहीं है वहां पे, ये तुम लोगों की आपस की जो है ना ये प्लानिंग है। तो ये तीनों ही मतलब हो सकते हैं तफासीर में, ये तीनों लिखे हुए। हुम लिल कुफ्र यौमा इज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान। वो उस दिन ये जो बातें कर रहे थे ना वो कुफर के ज्यादा करीब थे ईमान से, ईमान की बनिस्बत। मुनाफिक जो होता है वो ईमान और कुफर के दरमियान होता है ना, ला इलाहा उलाई ला इलाहा उलाई, अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ना कि ना इधर के होते हैं ना उधर के होते, मुजब्जबीना बैना ज़ालिक, वो तो तजब्जब में होते हैं दरमियान 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 में। तो लेकिन उस दिन वो कुफर के ज्यादा करीब थे। यकूलून भी अफवाहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, मुंह से वो बोल रहे थे जो उनके दिलों में नहीं था। मुनाफिक की एक निशानी ये होती है कि वो डबल फेस होता है, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब अंदर उनके दिलों में क्या था, खुश हो रहे थे कि अच्छा जाएं आ जाके मरे वहां पे, तो मरेंगे तो हमारी भी जगह खाली हो, हम मदीना में आराम से रहें, और अब्दुल्ला बिन उबई को तो ये था कि मैं ही बादशाह बन जाऊंगा, फिर पहले भी मैंने ही बनना था, तो चलो अच्छा है जाएं, ये यहाँ पे इनको नुकसान होगा ना इस तरह ही इनका खात्मा हो जाए। तो ये इनके दिल की असल चीज थी अंदर। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह को तो पता है ना जो वो छुपाते हैं, अल्लाह को तो जानता था ना ये बातें उनके दिल की, तो मुंह से कह रहे हैं हमें लड़ना नहीं आता, हमें लड़ना नहीं आता, और दिलों में क्या है। तो ये जो जब हम भी इस तरह की डिप्लोमेसी कर रहे होते हैं कि हम मुंह पे तो कुछ और अंदर हमारे कुछ और है, मुंह पे तो किसी को बड़ा प्यार मोहब्बत आए, तुम ऐसे पे तो तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता तुम्हारे, और दिल अंदर से पता नहीं उसके अंदर क्या भरे में कीने, और वो तो उस वक्त उसको तो नहीं पता, उसको तो यही पता कि ये कह रही है, लेकिन याद रखे वल्लाहु आलम हो बीमा यक्तुमून, अल्लाह हम सबको माफ करे, निफाक से अल्लाह हमें बचाए, खयानत से अल्लाह हमें बचाए, ऐसे कलमात बोलने से अल्लाह हमें बचाए, रसूल की नाफरमानी से अल्लाह हमें बचाए। तो ये किरदार निफाक वाला सिर्फ उस वक्त नहीं था, ये आज भी ये कैरेक्टर, ये जो सिफत है ये आज भी मौजूद है कि इंसान मुंह से जो बोल रहा है उसके अंदर वो नहीं है, और ये सख्त कभी बात है। अल्लादीन कालू लि इख्वानिहिम वकादू, अगर आप वकादू को जरा ब्रैकेट कर दें, पहले ये बात समझे, अल्लादीन कालू लि इख्वानिहिम वो लोग, उन्होंने कहा अपने भाइयों से, लव अताउना मा कुतिलू, अगर वो इताअत करते हमारी तो मारे ना जाते इस तरह, और उसके बाद ये हाल है जो उनका बताया जा रहा है, जिसको मैंने आपको ब्रैकेट कराया, वकादू यानी वो खुद बैठे हुए थे, यानी खुद तो नहीं गए जंग में, खुद बैठे रहे, और अब कह रहे हैं अपने भाई बंदों से, भाई बंद समझते हैं ना कि सके भाई जरूरी नहीं है, मतलब उनकी बरादरी कबीले उनके जो भाई बंद लोग, अगर हमारी बात मान लेते तो मरते तो ना जाके, वही जैसे पहले बात की थी कि अगर हमारे पास होते तो ना कत्ल किए जाते, तो उनसे कहो कुल कह दीजिए फदराउ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तुम ऐसा करो, तुम तो नहीं ना गए बाहर लड़ने, तुम तो अपने घरों में बैठे हुए ना, तुम अब अपने घरों में बैठे हुए अपनी मौत को जरा टाल के दिखाना, इसको हटा के दिखाना, तुम्हें तो नहीं ना आनी चाहिए मौत, तुम तो गए नहीं लड़ने, तो तुम जरा हटा के दिखाओ मौत को, ये उनको कहा जा रहा है। तुम समझते हो बाहर जाने से मौत आएगी, तुम समझते हो कि लड़ने से मौत आएगी, तुम हटाओ ना फिर, तुम तो नहीं जा रहे, तुम अपने घरों में हो, तो अब दिखाओ क्या घरों में रहने वालों को मौत नहीं आती, आप बताएं क्या डॉक्टरों से इलाज कराने वालों को मौत नहीं आती, कहते ना हाय डॉक्टर की अगर चली जाती, हाय अगर वो ट्रीटमेंट करता, हाय अगर फलां अस्पताल में होती, तो उन अस्पतालों में जाने वालों को नहीं मौत आती क्या, इंसान सोचे, तो इस तरह की बातें करना, हाय अगर वो मेरी बात मान लेती ना तो ये ना होता, ये भी हसरतें हैं। मौत तो अब सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ कुंतुम फी बुरुजे मुशय्यदा, चाहे मजबूत किलों के अंदर जाके छुप जाओ ना, आई ना मा तकुनु, तुम कहीं मर्जी चले जाओ, मौत तुम्हें आके रहनी है, चाहे मजबूत किलों में जाके छुपो, बुर्जों में छुप जाओ जाके। अब आगे जो तीन आयतें हैं ये शोहदा का मकाम बयान करने वाली है, कि शहीदों का मकाम क्या है, कि तुम्हें इस पे रोना पड़ लगा हुआ है कि वो हाय मर क्यों गए, हाय वो कत्ल हो गए, हाय वो तो गए थे तो इसलिए हुए, हमारी बात मान लेते तो ना होते, हमारे पास होते तो ना होते, अगर ऐसे हो जाता तो ये ना होते, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है उनका मकाम और मर्तबा क्या है, उनका मकाम और मर्तबा ये है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, तुम कह रहे हो ना वो कत्ल हो गए, तो तुम ना समझो उनको जो कत्ल हुए अल्लाह के रास्ते में अमवात, उनको मुर्दा ना समझो, बल अहया उन, बल्कि वो तो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम अपने रब के यहाँ जिंदा है, युरज़कून और रिज्क भी दिए जाते हैं। अब हमारे यहाँ ये जो बात है कि कहते हैं वो रूहें आ रही हैं घरों के अंदर आके चक्कर लगा रही हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिसका अच्छा मकाम होता है वो कभी वापस नहीं आना चाहता सिवाय शहीद के, शहीद है जो कहता है कि मैं काश मुझे अल्लाह ताला मौका दे तो मैं वापस जाऊं और मैं जाके अल्लाह के रास्ते में लड़ूं और फिर शहीद किया जाऊं, क्योंकि उसने जो मकाम जो देख लिया वो मकाम देख के वो सोचता है कि एक दफा मुझे वापस दोबारा भेजा जाए, वो उसके दर्जात को देख चुका है, शहादत के मर्तबों को पहचान चुका है, इसलिए वो कहता है, लेकिन उसको भी वापस नहीं भेजा जाता, उसको भी उसकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी की जाती, तो फिर कहां से ये है कि वो जो रूहें आ रही हैं और घरों के चक्कर लगा रही हैं, काफिर भी तमन्ना करता है मुझे वापस भेजा जाए, उसको भी नहीं भेजा जाता, तो तो फिर किधर है ना, कोई नेक वापस आ सकता है ना बद वापस आ सकता है। ये पता नहीं किन की रूहों को अल्लाह जाने कहते रहते हैं कि ये वो आ गई, खुशबू हो गई घर के अंदर, क्या हो गया, ये पकाओ खाना वो पकाओ, वो आ रही है रूह और अब वो जा रही है, और अब फलाने दिन आएगी और अब जुमेरात हो गई तो आ रही है। ये सारी बातें खुद की बनाई नहीं है, कुरान और हदीस से इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि कोई रूह वापस आ सकती है। क्यों आएगी वो, क्या आप समझते हैं जो वापस यहाँ पे घूम रही है अगर रूह, तो क्या उसको इसका मतलब अच्छा ठिकाना नहीं मिला वहां पे? क्योंकि हदीस तो ये बताती है कि जिसका अल्लाह के हाँ जिस जो बेहतरी पाता है वो हरगिज़ फरमाया दुनिया में आना पसंद नहीं करता। तो हमारे लिए तो घूमती फिरती है ये रोज, हर हफ्ते ही चली आ रही है। इसलिए यहां पे फरमाया जो शहीद भी है ना वो कहाँ जिंदा है, दुनिया में जैसे हम जिंदा बैठे हुए नहीं, इंद रब्बिहिम, अपने रब के हाँ जिंदा है, अपने रब के हाँ उसकी जो जिंदगी है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। सूरह बकरा में हमने पढ़ा लेकिन ला तशऊरून, तुम्हें नहीं, तुम शऊर रख ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं है जिस चीज का अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम नहीं शऊर रखते, तुम्हें समझ नहीं आ सकती उसकी, तो आप कैसे उसकी उसको डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं जी ऐसी वो जिंदगी है। हम समझ नहीं सकते, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो फिर क्या जरूरत है उसके ऊपर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने की। लेकिन जब हमें बता दिया गया वो जिंदा है अल्लाह के पास और वो रिज्क भी पाते हैं, तो बस हमारे लिए इतना ही काफी है। समय ना वाता ना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, ठीक है। तो ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, ये बरजख की वहां पे कोई जिंदगी है। वो कैसी जिंदगी है इसके मुताबिक हाँ, उसकी हदीस में हमें पता चलता है कि उनकी कैसी जिंदगी। कि हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैंने हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया उनकी रूहें जो हैं वो ग्रीन कलर के बर्ड्स हैं, उनके दिलों के अंदर हैं, अर्श की कंदीलें उनके लिए, अर्श में कुछ जैसे कंदील होती है लालटेन टाइप चीज, उसमें उनके लिए वहां पे उनके ठिकाने हैं। सारी जन्नत में जहां कहीं चाहें चरें चुगें और उन कंदीलों में आके आराम करें। उनकी तरफ उनके रब ने एक मर्तबा नजर फरमाई और पूछा कुछ और चाहते हैं, वो कहने लगे अल्लाह हम और क्या मांगे, सारी जन्नत में जहां चाहें खाएं पिए, हमें इख्तियार है, फिर हम क्या और मांगे। अल्लाह ताला ने उनसे फिर यही बात पूछी, फिर यही बात पूछी, 3 दफा सवाल किया। जब उन्होंने देखा कि बगैर कुछ मांगे कुछ चारा नहीं है, तो वो कहने लगे ऐ हमारे रब, हम चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को जिस्मों की तरफ लौटा दे, हम फिर दुनिया में जाके तेरे रास्ते में शहीद हों, फिर तेरे रास्ते में लड़ें और मारे जाएं, फिर तेरे रास्ते में लड़ें और मारे जाएं। तो अब पता चल गया इससे कि उनको कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, वो वहां पे इतने खुश होते हैं। तो तुम उनके ऊपर अफसोस कर रहे हो ना, हाय वो तो इस तरह होते, हाय वो तो मारे गए, हाय बेचारे, हाय चले गए, हाय हमारी बातें नहीं सुनी, तुम उनके ऊपर हाय वाय करने लगे हो, वो देखो कितने खुश हैं वहां पे, वो तो या उन्हें इंदा रब्बी हिम युरज़कून। फिर इसी तरह एक जो हजरत जाबिर के बारे में आता है ना, ये हजरत जाबिर सुभान अल्लाह यंग सहाबी हैं, इनके वालिद जो थे अब्दुल्ला वो शहीद हुए थे उहद में। तो जाबिर बड़े ही उदास थे, इनके ना वालिद के छोटे छोटे और बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो ये बहुत दुखी हो रहे थे। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाने लगे जाबिर क्या बात है, तो मैं तुम्हें गमगीन देख रहा हूं। तो मैंने कहा या रसूल्ला मेरे बाप शहीद हो गए, उन पे इतना कर्जा भी था, और मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और बहुत सारे हैं। तो आपने फरमाया सुनो मैं तुम्हें बताऊं, जिस किसी से भी अल्लाह ने कलाम किया ना, अब ये इतनी प्यारी बात है, ऑलवेज मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगती है ये बात, ये अब आपको और से सुनिएगा कि फरमाया जिस किसी से अल्लाह ने कलाम किया ना पर्दे के पीछे की है, पर्दे के पीछे से की है, लेकिन तेरे बाप से आमने सामने बातचीत की है और अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे मांग जो मांगेगा मैं दूंगा, तो तेरे बाप ने कहा अल्लाह अज़्ज़ वजल मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि तू मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे और मैं तेरे रास्ते में दोबारा शहीद किया जाऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बात तो मैंने पहले से तय कर दी हुई कि कोई दोबारा नहीं लौट सकता एक दफा दुनिया से। कहने लगे ऐ अल्लाह मेरे बाद वालों को फिर इन मर्तबों की खबर पहुंचा दे। तो फिर ये आयत उतरी है कि ना उनको ना कहो कि वो मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं, वो तो अल्लाह के हाँ कितने बड़े मकाम पाए हैं। और इनका ये भी आता है कि कि जाबिर फरमाते हैं कि मेरे बाप की शहादत के बाद मैं रोने लगा और अपने बाप के मुंह से कपड़ा हटा हटा के बार बार उनके चेहरे को देख रहा था। अब देखिए ना, ऐसे सात लोग भी हैं कहने वाले, आए बेचारा मर गया, ना जाता तो ना मरता, हाय बेचारा। तो इतना एक एक ऐसी बात, डिप्रेसिव बात करने वाले लोग भी इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो कहते हैं सहाबा मुझे मना करते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, आपने नहीं मना किया। फिर आपने फरमाया जाबिर रो ना, जब तक तेरे बाप को उठाया नहीं गया फरिश्ते अपने परों से उन पर साया किए हुए थे, फरिश्तों ने साया किया हुआ था उनके ऊपर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, कि जिनके ऊपर अल्लाह फरिश्ते साया करें अल्लाह हमें भी उनमें से करना। मुस्नद अहमद में है कि आप ने फरमाया जब तुम्हारे भाई ओहद वाले दिन शहीद किए गए तो अल्लाह ताला ने उनकी रूहें सब्ज परिंदों के कल्ब में डाल दी जो जन्नती दरख्तों के फल खाते और जन्नती नहरों का पानी पीते, अर्श के साए तले वहां लटकती हुई कंदीलों में आराम करते। जब खाने पीने रहने सहने की ये बेहतरीन नेमतें उन्हें मिली तो कहने लगे काश जो दुनिया में हमारे भाई हैं ना उनको भी पता चल जाए कि हमें इतनी अच्छी नेमतें मिली हुई यहाँ पे, काश उनको पता चल जाए। तो अल्लाह ताला ने तब उनसे फरमाया तुम बेफिक्र रहो मैं उनको खबर पहुंचा देता हूँ। तो ये आयतें उतरी। तो फिर ऐसा गुमान करना शहीद के बारे में, ये तो फिर क्या, वो तो कितनी अच्छा देखें दुनिया के अंदर ही ना किसी के, मतलब हमारे हमारे मुल्कों में समझ लें जहां पे कोई इतनी फैसिलिटी ना हो, गाँव वगैरह समझ लें, दुनिया तो गाँव से भी बदतर, क्या दुनिया की तो कोई हैसियत ही नहीं। मगर चलो आप कहें कि एक एक ऐसी जगह जहां पे ज्यादा सहूलियात नहीं, वहां से किसी का एक का बच्चा कहीं बहुत पहले वक्त होता था दुबई चला जाता था तो इतना बड़ी चीज समझी जाती थी, क्या है उसकी जदाई भी आराम से बर्दाश्त कर लेते थे कि नहीं जी इतनी बड़ी जगह पे, कोई इंग्लैंड पढ़ने चला गया तो कितना बड़ा समझा जाता था। देखो वो तो कुछ भी चीजें नहीं है, वो तो इस दुनिया की मुसीबतों का गढ़ है ये, और यहाँ पे ये एक से दूसरी जगह भी वहां पे कोई और मुश्किलात है। जो जन्नत के आला मकाम ऐसे पाले फिर उसके ऊपर क्या रोना, वो तो शहीद होता है, शहीद के ऊपर तो रोने की जरूरत नहीं। वो तो कितने बड़े, और सोचे हजरत इमाम हुसैन का मकाम कितना होगा ना, कि वो शुहादा में भी उनका दर्जा कितना है, और सहाबा का, और जो अल्लाह के रास्ते में जाए वो शहीद है। तो मुस्नद अहमद में है कि शहीद लोग जन्नत के दरवाजे पर नहर के किनारे से, एक गुंबद है सब्ज में है, सुबह शाम उनको जन्नत की नेमतें पहुंच जाती हैं। ये भी एक शुहादा में एक मर्तबे पे ये भी है। ये कुछ हैं जिनकी रूहें परिंदों के कल्ब में और वो अंदर चरते चुगते हैं, कुछ हैं जिनका ठिकाना ये गुंबद है और वहां पे वो रहते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे जो आम मोमिन है ना, जो आम नेक लोग हैं, उनकी रूहों को जन्नत दिखाई जाती है मगर वो एंटर नहीं हो सकते। मगर ये जो शुहादा है इनकी तो ये इंसानी तौर पे एंटर नहीं हुए मगर अभी बर्ड्स के दिलों के अंदर इनकी रूहें हैं, लेकिन वहां पे मजे करते। अच्छा अब ये थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं ये भी बात कि ये नहीं है कि सिर्फ जो अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़ने वाला है वो ही शहीद है, बल्कि ऐसा भी हमें पता चलता है कि वो भी शहीद है जो कि जो बहुत सारी अहादीस हैं। अब सारा का टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आपको वैसे ही ओवरऑल बता देती हूँ कि जैसे ताऊन की बीमारी में मरने वाला, पेट की बीमारी से मरने वाला, डूबने वाला, दब के मरने वाला, जो लंग्स हैं उनकी बीमारी से मरने वाला, जल के मरने वाला, प्रेग्नेंट औरत है वो डिलीवरी के वक्त उसको वो मर जाए, अपने माल की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए, अपनी जान की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए, अपने अहलो अयाल की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए, दीन की हिफाजत में मारा जाए, सवारी से गिर के मर जाए, अल्लाह के रास्ते में मरने वाला एक तालिबे इल्म भी है जो अल्लाह के दीन के इल्म के लिए निकलता है और वो मर जाए, पहाड़ से गिर के मरने वाला, ये बहुत सारी शहादत की इसके अंदर बताई गई हैं जो अहादीस में आती हैं। बाहर क्या, जो शहादत का भी आला तरीन मरतबा है वो तो वो ही है कि अल्लाह के रास्ते में जो लड़ते हुए मरने, मगर इनको भी एक शहादत कर, मगर जाहिर है उससे तो नीचे का है ये दर्जे, मगर इनको शहीद कहा गया फिर भी। और मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ तो वो हैं जो परिंदों के दिल में होंगे, कुछ बाज का ठिकाना वो गुंबद होगा, मगर सबके ही बड़े अच्छे ठिकाने हैं। तो आगे आता है फरीहीना बीमा आता हूँ अल्लाह मिन फतली, वो तो बड़े मजे में है वहां पे, जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया वो उस पर खुश है। और फजल पता है क्या होता है? फजल हक नहीं होता, एक होता है ना, मैंने आपको हमेशा बताया टिप, टिप समझ लें फजल है, यानी एक बंदा है उसने जो सर्विस आपको दी है, आपने उसके पैसे उसको दिए, एक है आप ऑन टॉप ऑफ इट कुछ देते हैं, वो समझ लें फजल है, यानी जो उन्होंने काम किए हैं ना उससे बढ़ के जो कामों का रिवॉर्ड है वो तो इतना, इस काम का इतना, इस काम का इतना, उसके ऑन टॉप ऑफ इट ये अल्लाह का फजल है, जो हक भी नहीं है उससे जायद दे देना ये फजल है। वो अल्लाह ने उनकी जो कुर्बानी थी उसके ऊपर इतनी बड़ी अप्रिसिएशन उनको दी, इतनी जितनी उनका काम उतना नहीं जितनी से बढ़ के अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह, उसके ऊपर इतने खुश है बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्ट के अच्छा इतना बड़ा हमें मिल जाएगा। लेकिन जो मोमिन होता है ना वो तो वैसे ही सारी जिंदगी अपने किसी काम को ज्यादा बड़ा ही नहीं समझता, तो हमेशा ही होता है नहीं ये भी कम है अभी और वो तो जो वहां पे जाके जब देखते हैं कि अल्लाह तूने इतनी प्यारी कदरदानी की, तूने ये मेरी छोटे छोटे कामों का इतना ज्यादा रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो जो उनके काम है उसके इक्वल से भी बढ़ के उनको मिल रहा होगा वहां पे, तो वो तो जो जन्नत की नेमतें, इंसान कुछ भी कर ले वो तो उसकी कीमत तो दे ही नहीं सकता ना, तो जाहिर है वो अल्लाह का फजल ही हो सकती है। फरीहीना बिमा आताहुम अल्लाह मिन फदली व यस्तबशीरून बिल्लदीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम। अच्छा ये बात बड़ी प्यारी है, वो खुशी के मुतमन्नी होंगे, यहाँ पे दो यस्तबशीरून आया, एक इस आयत में और एक अगली में, दोनों में डिफरेंस है, ये खुशखबरी, क्या खुशखबरी पाते होंगे, उनको खुशखबरी मिलती होगी किस बारे में, उन लोगों के बारे में जो लम यलहक़ू बिहिम, जो अभी उनसे मिले नहीं है, मिन खल्फिहिम उनके पीछे हैं, कहाँ पे क्या मतलब है, कौन से लोग, वो जो दुनिया में रह गए हैं ना, वो जो दुनिया में रह गए हैं, इनके साथी या इनके घर वाले जो इसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे ये थे, अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, जब उनकी खबरें उनको मिलती हैं इतने खुश होते हैं, अल्लाह खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खुश भी इस बात पे होते हैं कि उनके ऊपर भी कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा जब वो हमारे पास आएंगे तो, यानी किसके ऊपर नहीं खौफ गम होता, अपने ऊपर की नहीं बात कर रहे, अपने तो उनको ऊपर वो तो बड़े अल्लाह के फजल में है, वो कहते हैं वो हमारे पीछे वाले भी इसी ट्रैक पे चल रहे हैं, वो भी हमें मिलने वाले हैं, उनको भी ये सारी नेमतें मिल जाएंगी, वो इतने इस बात से खुश होते हैं कि उनके ऊपर भी कोई गम नहीं होगा जब हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो आप समझ आ गई कि वो अपनी नेमतों पे तो खुश हैं, उनको और खुशी इस बात की है कि जो हमारे भाई बंद हैं दुनिया के अंदर वो इसी रास्ते पे हैं, वो भी हमें मिलने वाले हैं, फिर वो आइंदा जब फ्यूचर में उनको भी कोई खौफ नहीं होगा, और उनको अपनी वला हम यहजन, हुजन जो होता है ना वो पीछे की कोई गम होता है, खौफ आगे का होता है, उनको आगे का भी नहीं कोई खौफ होना, और उनको जो पीछे छोड़ी हुई चीजें हैं उनका भी नहीं कोई गम होगा, तो कितने इनके दिल खुले हैं ना, यहाँ पे दुनिया में ना किसी को कोई भलाई मिल जाए तो दूसरे एकदम जेलस हो जाते हैं, आए इसको क्यों मिल गई, और अगर अपने पास है भी किसी के पास कोई अच्छा घर है, कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छी गाड़ी है, कोई अच्छा लायक बच्चा है, तो अब अपने पास चाहे होगा कहते हैं किसी और को ना मिले, मेरे जैसा ना किसी और के पास हो, फौरन जलन कुड़न जेलसी, लेकिन ये जेलस नहीं है देखें सुभान अल्लाह, वो उनके अंदर कोई हसद नहीं है, सेल्फिश नहीं है कि बस मुझे मिलना चाहिए किसी और को ना मिले, नहीं वो खुश होते जा रहे हैं वहां पे देख देख के कि आया अच्छा वो भी हमारे रास्ते पे चल रहे हैं, उनको कैसे पता चलता है कि वो हमारे रास्ते पे चल रहे हैं, दुनिया में तो नहीं आ रहे वो, तो कैसे उनको पता चलता है, तो एक इसके अंदर बात बताई जाती है कि हजरत सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहीद को एक किताब दी जाती है कि फलां दिन तेरे पास फलां आएगा और फलां दिन तेरे पास फलां आएगा, बस जिस तरह दुनिया वाले अपने किसी गैर हाजिर के आने की खबर सुन के खुश होते हैं, इसी तरह ये शुहदा भी इन शहीदों की आने की खबर से बड़े खुश होते हैं कि वो हमारे पास आ जाएंगे, और एक तो ये आपको हदीस मिल गई, दूसरी एक और बात हमें पता चलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कि जो चले जाते हैं उनके पास जब दूसरे पहुंचते हैं, बाद वाले पहुंचते हैं, मसलन है किसी की अम्मी फौत हुई, अब वो बेटी भी चली गई, अब वो जो जब वहां पे पहुंचते हैं ना तो बरजख में अगर एक ही मकाम है, मसलन इलियीन है, अच्छा मकाम है, तो बरजख में दोनों मिलते हैं। वो रूहें जो पहले की वहां पहुंची होती वो इनका इंतजार कर रही होती। जब वो आते हैं तो वो उनको ऐसे मिलते हैं जैसे हम नहीं अपने किसी प्यारे को कोई एयरपोर्ट पे आए तो उसको लिपटते हैं, उसको मिलते हैं, तो वो उनको इस तरह इस्तकबाल करते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं, जब फलाने का क्या हाल है। मतलब आजकल अगर फोन ना हो, अब तो वैसे हमें हर चीज का पहले ही फोनों से पता होता है, लेकिन अगर फोन नहीं होता, हमारे कोई दूर से आता है, तो हम उसको पूछेंगे नहीं, अच्छा वहां पे तू उस मुल्क के अंदर कैसे हैं वो फलाने लोग, फलां का क्या हाल है। तो अब जाहिर है उनको दुनिया का तो नहीं पता कि वो दूसरे लोगों का क्या हाल है, तो वो उनसे पूछते हैं फलां कैसा है, फलां कैसा है। तो वो उनको बताते हैं कि जी वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो इस हाल में। तो वो बड़े खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह खौफ न रहे की कितनी प्यारी बात है। सुभान अल्लाह। और देखें जो वाकई जो मुखलिस लोग होते हैं ना, वो दूसरों की नेकी से भी खुश होते हैं। वो जो खुद रयाकार और खुद की नेकियां भी कुछ अल्लाह की खातिर नहीं होती, बस दिखावे की होती हैं, वो बस जलते भुनते रहते हैं लोगों को भी नेकी करते देख के कि ये क्यों आगे बढ़ गई, ये क्यों, इसने क्यों कर लिया। इसका मतलब ये भी कितनी बड़ी क्वालिटी है शुहदा की, नेक लोगों की ये क्वालिटी हो सकती है कि वो सेल्फिश ना हो, वो जले कुड़े नहीं, उनके दिल इतने बड़े हों और दूसरों को मकाम मिल रहा है ना उससे और खुश हों। और फिर यस्तबशिरुना बिनिअमति मिनल्लाहि व फदलि, वो खुश होते हैं अल्लाह ने जो उनके ऊपर नेमतें की हैं और जो फजल किया है उससे बड़े ही खुश होते हैं। अब ये वाला इस्तबशार किस चीज पे है, ये जो उनको खुद को मिला हुआ है, जो उनको खुद नेमते मिली हुई ना, इसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं वो वहां पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको नेमते दी दी और फजल भी है अल्लाह का, यानी अल्लाह ने हक से भी बढ़ के उनको अता फरमाया है। कितना कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है। अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह वाकई मोमिनों के अजर को जाया नहीं करता है। जो वो करते हैं अल्लाह ताला उस अजर को संभाल के उनके लिए रखता है, उनके अमल को। हाँ इंसान अपना अमल खुद जाया कर दे वो अलग बात है, हम अपने खुद अमल एहसान जिता के जाया कर दें, या रयाकारी से जाया कर दें, या कोई और तरीकों से जाया कर दें, अल्लाह माफ करे, लेकिन अल्लाह ये कभी दिल में ना लाए। पता नहीं इसका कोई सवाब मिलना भी है कि नहीं, पता नहीं है, कोई मेरी कोशिशें तो मैं इतनी कर रही हूँ, अल्लाह जाने कुछ होता भी है इनसे या नहीं। नहीं, अल्लाह नहीं जाया करता कभी, तुम खुद उसकी हिफाजत की लेकिन कोशिश करो दुनिया में। तो वो बड़े खुशियां मनाते फिर रहे हैं, उनको पता है कि अल्लाह ने हमारे देखो अजर को कितना, हमारे अमाल की कितनी कदरदानी की। तो कुछ जो इनामात है ना इनके शहीद के, वो हदीस से हमें क्या पता चलते हैं। नंबर 1 ये कि खून का पहला कतरा गिरते ही उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, पहला कतरा गिरते ही, सुभान अल्लाह। नंबर 2 वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है, इसको जन्नत में दिखा दिया जाता है ये है तुम्हारा घर। नंबर 3 उसे ईमान का लिबास दिया जाता है, कोई लिबास होगा ईमान का। नंबर 4 उसकी उसको 72 हूरें दी जाती हैं। नंबर 5 कब्र के अजाब से उसको बचा लिया जाता है। नंबर 6 बड़ी घबराहट से अमन में रहता है, वो घबराहट का दिन है कयामत का दिन। नंबर 7 उसके सर पे वकार का ताज रख दिया जाता है, जिसमें एक याकूत जो है दुनिया और जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। नंबर 8 अपने 70 घर वालों की सिफारिश कर सकता है वो, ये सिलसिला है सहीहा की हदीस है। तो सुभान अल्लाह, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है शहीद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये भी कहा जाता है कि बईरे माऊना में जो 70 सहाबा शहीद हो गए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन काफरों ने जिन्होंने उनको कत्ल किया था उनके लिए ये भी की थी कुनूते नाजला, उनके ऊपर बद्दुआ भी की थी। तो बाज़ कहते हैं कि उस बारे में कुरान में ये आयत उतरी कि वो कह रहे हैं कि हमारी कौम को हमारी खबरें ये अल्लाह पहुंचा दे कि हम तो यहाँ पे बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं, और बहुत हमें अल्लाह ने नेमतें भी ली हैं और बड़ा अपना फजल किया हुआ है हमारे ऊपर, और अल्लाह नहीं जाया करता ईमान वालों का जो अजर है। इस तरह ये मतलब उहद के बारे में भी हो सकता है, ये बईरे माऊना के शुहदा के भी बारे में, मगर जिसके भी बारे में, मगर शुहदा का ये मकाम है और ये मर्तबा है उनका। हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फरमाना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस जो इंसान इसकी ख्वाहिश रखता हो, हदीस में आता है कि जो तिर्मिजी में है, जिसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से शहादत की दुआ की भी है, अल्लाह ताला उसको शुहदा का मर्तबा अता फरमाता है, चाहे वो बिस्तर पे ही मरे। ठीक है, तो ये थी आज की आयात। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनते हैं।
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين